हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा परी की तपस्या का आखिरी घंटा चल रहा था। अगर वो आखिरी घंटा पूरा हो जाता तो तारा को आसानी से अमन के पिता का पता चल सकता था। जैसे ही आखिरी घंटा पूरे होने वाला था, विक्रांत रंधावा को तारा के कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ। विक्रांत रंधावा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन था जो विक्रांत को भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद तारा के ठीक पीछे विक्रांत रंधावा को धुआं धुआं सा दिखाई देने लगा और उस धुएं में से एक बहुत ही बड़ा भयानक काला नाग उसे तारा परी के ठीक पीछे दिखाई दिया। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने उस काले नाग को देखा, वो पूरी तरह से हैरान हो गया और सोचने लगा कि हो ना हो ये काला नाग जरूर तारा को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। वो सांप तारा परी के कानों की ओर कुछ खाने के लिए बढ़ा। तभी विक्रांत रंधावा ने देरी न करते हुए उस सांप की गर्दन जोरों से पकड़ ली। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने उस सांप की गर्दन पकड़ी, वहां दूर बैठे काली शक्तियों के महागुरु की आंखें एकदम से खुल गईं, क्योंकि पहली बार उनके कड़े मंत्र पर किसी ने वार किया था। ये दरवाजे का पहरेदार था जिस पर विक्रांत रंधावा ने वार कर दिया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। विक्रांत रंधावा तो सोच रहा था कि ये तारा को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, लेकिन विक्रांत रंधावा को इस बात का पता नहीं था कि ये सांप तारा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो सिर्फ उसके अनुष्ठान को भंग करने के लिए आया था। क्योंकि थोड़ी देर पहले तारा के पास आने से पहले वो करिश्मा का अनुष्ठान भंग करके आया था। करिश्मा भी अपने कमरे में बैठी हुई अनुष्ठान कर रही थी और उसके बाद वो तारा के कमरे में उसका अनुष्ठान भंग करने आया था, लेकिन विक्रांत रंधावा ने वक्त रहते उसे देख लिया था और उसने जोरों से उसकी गर्दन पकड़कर दबोचना शुरू कर दिया था। उस काले भयानक सांप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भी आखिर काली शक्तियों के गुरु का गुलाम था, लेकिन अब उसकी जान खतरे में थी और वो चाहकर भी काली शक्तियों के गुरु को अपनी सहायता के लिए नहीं बुला सकता था। विक्रांत रंधावा अदृश्य होकर उस सांप की गर्दन पकड़े हुए खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। विक्रांत रंधावा उस काले सांप को लेकर सीधा जंगल में पहुंच गया, क्योंकि वो अमन की हवेली के आसपास उसे नहीं मार सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके पकड़े जाने का खतरा था, और क्योंकि विक्रांत रंधावा उस वक्त अदृश्य था, वो जल्दी ही उस सांप को लेकर उस गहरे घने जंगल में पहुंच चुका था जहां पर उसकी माँ भी निवास करती थी। जैसे ही विक्रांत रंधावा उस सांप को लेकर अपनी माँ के पास उस गुफा में गया, उसकी माँ जो तप कर रही थी अचानक अपनी आंखें खोलकर विक्रांत रंधावा और साथ में उस सांप को देखने लगी। जैसे ही उस सांप पर विक्रांत रंधावा की माँ की नज़र पड़ी, वो हैरान हो गई और जल्दी से अपने बेटे से बोली, ये क्या कर रहा है तू, छोड़ उसे, छोड़ो उसको, छोड़। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने अपनी माँ की इस तरह की घबराई हुई आवाज़ सुनी, वो हैरान हो गया। जल्दी से उसने उस सांप के गले को छोड़ दिया। सांप का गला छोड़ते ही अचानक उस सांप के अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी और वो एक बहुत ही बड़े राक्षस में बदल गया। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने उस सांप का असली रूप देखा, वो हैरान हो गया। तब विक्रांत की माँ ने विक्रांत रंधावा से कहा, तू पागल हो गया है, तू जानता है तूने ये क्या किया है, तुझे इस बात का अंदाज़ा भी है, उसने उसे डांटते हुए कहा। तब विक्रांत रंधावा अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, आप ये क्या कह रही हैं, ये मेरी तारा की जान लेना चाहता था, इसीलिए मैं इसे यहाँ तक लाया हूँ और मैं यहाँ इसे खौफनाक मौत देने के लिए लाया हूँ, लेकिन आपने इसे देखते ही छोड़ने के लिए कह दिया, आखिर ये चल क्या रहा है, माजरा क्या है और ये तारा की जान क्यों लेना चाहता था। तब विक्रांत रंधावा की माँ ने कुछ पल उस राक्षस की ओर देखा और फिर अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, अरे बेवकूफ़, ये तारा की जान लेने के लिए नहीं गया था, ये तारा का अनुष्ठान भंग करने के लिए गया था। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने ये सुना, वो हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगा और कहने लगा, लेकिन मॉम, आपको कैसे पता चला कि तारा कोई अनुष्ठान कर रही है। तब उसकी माँ ने रंधावा से कहा, तारा अमन के पिताजी को ढूंढने के लिए अनुष्ठान कर रही थी और वो अनुष्ठान भंग करने के लिए ही ये काली शक्तियों के गुरु का पहला दरवाजे का महारक्षक उसे रोकने के लिए गया था। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल उसका अनुष्ठान भंग करता, और तू जानता है तूने उन्हें वहां से हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तारा को अमन के पिताजी की जगह का पता चल जाएगा कि अमन के पिताजी आखिर किस जगह पर पिछले 15 सालों से कैद हैं। विक्रांत रंधावा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा था, क्योंकि तारा अनुष्ठान करते हुए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ तारा की खूबसूरती में खोया हुआ था। उसे तो किसी और चीज के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। विक्रांत रंधावा ने अनिश्चितता में अपनी माँ से कहा, लेकिन मॉम, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब उसकी माँ ने काली शक्तियों और सफ़ेद जिन्नों की लड़ाई के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ अपने बेटे विक्रांत रंधावा को बता दिया, और ये भी बता दिया कि अमन के पिता पिछले 15 सालों से काली शक्तियों के गुरु की एक काफ़ी शक्तिशाली पिशाचनी के कब्जे में हैं, और उस पिशाचनी तक पहुँचने के लिए 7 खतरनाक दरवाज़ों को पार करना होगा, और उनमें से एक दरवाज़ा वो था, वो काला नाग जिसे तुम पकड़कर यहाँ लाए हो, जो अब अपने असली रूप में आ चुका है। अपनी माँ की बात सुनकर विक्रांत रंधावा ने ऊपर की ओर उस बड़े से विशालनुमा सांप को देखा जो एक इंसानी शक्ल में आ गया था, लेकिन उसका चेहरा पूरा का पूरा भयानक काले नाग जैसा था। बाकी उसके नीचे का धड़ इंसान का धड़ था, लेकिन उसकी गर्दन पूरी भयानक मोटे नाग जैसी थी। उसका बड़ा ही चौड़ा सा फन था। तब विक्रांत ने अपनी माँ से कहा, लेकिन तब मुझे अब क्या करना चाहिए? तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कोई भी काली शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, और ये नाग भी तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वो शक्तिशाली नाग बोल उठा, कौन हो तुम लोग, और काली शक्तियों के गुरु के खिलाफ बगावत करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग जानते भी हो क्या किया है तुम लोगों ने? तुम लोगों ने सुरक्षा चक्र का पहला घेरा खत्म कर दिया है, लेकिन ये मत भूलो, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सुरक्षा चक्र को कोई भी नहीं भेद पाएगा। ऐसा कहकर वो नाग बहुत जोरों से हंसने लगा। विक्रांत कभी उस नाग की ओर देख रहा था तो कभी अपनी माँ की ओर। तब विक्रांत रंधावा की माँ ने विक्रांत रंधावा को चुप रहने का इशारा किया और उस नाग से बोली, हे नाग देवता, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, मेरे बेटे से गलती हो गई है। मेरे बेटे को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि तुम वहाँ केवल उस लड़की के अनुष्ठान को भंग करने के लिए गए थे। जैसे ही उसकी माँ ने अपने बेटे की ओर से उस नाग से माफ़ी मांगी, तब वो हैरानी से उनकी ओर देखने लगा और बोला, मैं नहीं जानता तेरे बेटे का उस लड़की से क्या रिश्ता है, लेकिन वो लड़की अब काली शक्तियों के महागुरु की कैद का पता जान गई है, इसीलिए अब मुझे उस लड़की की जान लेनी होगी। पहले तो मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है।
जैसे ही उस नाग ने ये कहा, विक्रांत रंधावा का गुस्सा आने लगा और वो उस नाग से थोड़ी तेज आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरी तारा की जान लोगे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कुछ सोचने की भी? उस पर सिर्फ और सिर्फ विक्रांत रंधावा का हक है, समझे तुम? विक्रांत रंधावा ने उस सांप को जैसे ही धमकी दी, वो सांप काफी चौंक गया और बोला, हे तू, एक मामूली इंसान होकर मुझे धमकी देता है? क्या तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तब विक्रांत रंधावा की माँ ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। विक्रांत को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, और अगर कोई उसकी तारा के बारे में कुछ कहे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता था। इसलिए विक्रांत रंधावा ने देरी न करते हुए उस नाग पर हमला कर दिया, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उन दोनों में टक्कर का युद्ध चल रहा था। उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। तब उसकी माँ ने बैठकर एक तप करना शुरू कर दिया, और तप करते वक्त उसने मन ही मन में काली शक्तियों के गुरु से बात करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ काली शक्तियों के महागुरु हैं, क्योंकि जब तक वो इस युद्ध को नहीं रोकेंगे तब तक उसका बेटा गुस्से से उस नाग पर हमला करता रहेगा, और वो नाग भी कम शक्तिशाली नहीं था। वहीं दूसरी ओर तारापरी का अनुष्ठान पूरा हो चुका था। अनुष्ठान पूरा होते ही एक जगह उसके दिलो दिमाग में छप चुकी थी। तारापरी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न नजर आ रही थी, क्योंकि आखिरकार जो 15 सालों से करिश्मा जी या जिन्नों के महाराज नहीं कर पाए थे, वो तारापरी ने एक ही दिन में कर दिखाया था। लेकिन तारापरी को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि उसने जो ये अनुष्ठान पूरा किया था, असल में वो विक्रांत रंधावा की वजह से पूरा हुआ था। विक्रांत रंधावा ने अनजाने में ही सही, लेकिन तारापरी की एक बहुत बड़ी मदद कर दी थी।